ठाकुर का क्या विचार है और लोगों का क्या इसमें विचार है, हम अगले पूछें। आज यहीं तक। वंजा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितान। जी के विचार हमने बतलाए, यही विचार हमारे रूप गोस्वामी का और हमारे गुरु परंपरा का है। मैंने कल क्या बतलाया देखो, निताई कहीं लेट रहा होगा, कहाँ कहाँ है, कामित्रिण के प्रति श्रद्धा कर रहा है, ये क्या हुआ? नहीं देखता तो नहीं, भगवान मान करके तृण की पूजा करता है, तो ये क्या हुआ? या एक वृक्ष की पूजा करता है? बहुत से लोग हैं भगवान नहीं जानते, उनको बोंगा कहते हैं असामी भाषा में, या दूसरे लोग उसकी पूजा करते हैं। इसके पूजा करने से हम लोग सुख शांति से रहेंगे, ये क्या चीज है? ये श्रद्धा भगवान पर ही जाएगी, क्योंकि वही फलों को देने वाले हैं, इसलिए उस पूजा में वही फलों को देते हैं। तृण की पूजा करने पर भी वही देते हैं, तृण नहीं देता। इसलिए सब मनुष्य को उन्होंने कहा जे हमारे पाने के पथ पर ही स्थित हैं, किंतु कोई बहुत दूर, कोई बहुत दूर, कोई थोड़ा सा दूर, कोई दूर, और भक्ति वाला ही जो भजन करता है वही ठीक रास्ते पर है। चलो आगे। भक्ति
विद्या भक्ति में जो ज्ञान कर्म आदि से अभिक्त है और जो अन्य अभिलाषा अभिलाषा से युक्त है, और जो कृष्ण इतर अनुशीलन करता है, जो भोगमय अनुशीलन है, उसको विद्या भक्ति कहते हैं। तो इसमें से आपने संसार के लिए जो कुछ चाहता है किंतु, और उसमें भगवान के लिए दिखावटी करता है और सब अंदर से भोग वासना चाहता है, संसारिक भोग चाहता है, तो ये सब, और भगवान को शायद भगवान के लिए सब दिखा, भगवान ने दिखा के करते करते यही भक्ति रागन होगा।
परम करुण है और राग मार्ग के प्रति लोभ उत्पन्न हो, अपनी किस लीला में ऐसा किया? किस लीला में? प्रारंभ से ही गया से लौट करके आए और आरंभ हो गया। जिस समय उन्होंने संन्यास लिया और विरह में तप्त होकर के वृंदावन जाने लगे, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर प्राण, काहिरे कैब दुख, उसको देखा जाए जैसे इनको क्या हो गया है। विचारक व्यक्ति देखा जाए क्यों हुआ। आप गया से आते ही अपनी जो बीती हुई कहने लग गए, गदाधर पंडित पर्दे में छिप गए, अब बरहा पीड़ाम श्लोक जब कहने लगे, जितने लोग थे सभी लोग रोने लगे। इसको जो देखा हुआ, जिसको भक्ति नहीं भी होगा लोभ उत्पन्न हो सकता है। संन्यास लाने के बाद में उनके जितने भी चरित्र हैं उन सब में, जबकि वो जा रहे हैं राय रामानंद जी के पास में और उनसे विचार चल रहा है, उस विचार को कहीं भी कोई पढ़े और लिखे तो कोई भी कारण ऐसा नहीं है जो उसको लोभ उत्पन्न न हो। तब देखेगा जिसे कर्म से, वर्णाश्रम धर्म से, कर्म मिश्रा भक्ति से, योग मिश्रा ज्ञान मिश्रा भक्ति से भी, यहाँ तक कि शुद्धा भक्ति से भी उन्नत जब ले गए, महाप्रभु जी ने इहो है कहा ज्ञाने प्रयास मदवंशन मनते, और इसे भी आगे बढ़े तो फिर लोभ का स्पष्ट रूप में नाम लिया, लोभमयी। क्या लोभमयी? ब्रजवासी लोग अपने किन किन भावों से सख्य बात्सल्य मधुर, कृष्ण को कैसे वशीभूत कर लेते हैं इसको जब सुनते हैं तो लोभ उत्पन्न हो सकता है। कृष्ण कितने मधुर हैं, कितने रूपवान हैं, कैसा उनका किशोर अवस्था है, कैसे कैसे गुण हैं, रसिक सबसे रसिकता सबसे अच्छी। एक आदमी जितना भी धनी हो, जितना भी ऊंचे पद पर रहे और रसिकता न रहे, कोई भी अधिक नहीं। कृष्ण इतने होते हुए भी रसिक हैं और ये लोग भी रसिक हैं, उनके भक्त लोग ब्रज के, जब उनका दोनों का परस्पर जब व्यवहार होता है उसको उन्होंने रूप गोस्वामी को कहा, तुम व्यक्त करो विदग्ध माधव ललित माधव में और उज्ज्वल नीलमणि में, भक्त स्वामी सिंधु में। उनके परस्पर देखने से क्या होता है, राधा जी के कैसे भाव आते हैं, नंद बाबा के कैसे भाव आते हैं, उन लोगों के कैसे भाव आते हैं, इस सब का वर्णन किया। उसमें हाव भाव इत्यादि जो भक्तों के अंगों में होते हैं, आंतरिक भाव जब बाहर में जब वो कुछ रूप में कुछ अलंकार से दिखते हैं, लोगों को देख करके लोभ उत्पन्न हो सकता है। विशेष करके रसराज महाभाव इत्यादि के संबंध में, कृष्ण रसराज महाभाव के रूप में क्यों आए, इसका कारण उद्दीपन क्या है, उसका उद्दीपन है ब्रज की लीलाओं का स्मरण। जबकि ब्रज की लीलाओं का स्मरण राधा जी के साथ में कृष्ण की लीलाओं का इतना अधिक है, जिससे महाप्रभु जी की कैसी स्थिति हो गई, कृष्ण की कैसी, राधा जी की कैसी, इसको सुन करके लोगों के हृदय में कुछ लोभ उत्पन्न होगा। इसलिए कृष्ण भक्ति रस भाविता मति जी कहा। इसके बाद में दास शांत रस नहीं लिया, ब्रज में शांत रस नहीं है, होने पर भी आच्छादित है, सखर रस को लिया, वात्सल्य रस को लिया, अंत में मधुर रस को लिया, इसमें उसे भी बढ़ करके श्रीमती राधिका जी का लिया। इसको दिखला करके उनके लीलाओं का कुछ वर्णन करके आस्वादन करा करके लोगों को इस तरफ में लेने की चेष्टा की, लोभ उत्पन्न हो। महाप्रभु जी ने यही काम किया, लोगों को लोभ उत्पन्न अंततः। ये लोग उत्पन्न होने पर राग मार्ग जो है अपने आप आएगा। राग मार्ग माने क्या, उन्हीं लोगों का अनुगमन करना, तब उस प्रेम को पाएंगे। इस तरह से महाप्रभु जी की यह परम करुणा है, जिसको कृष्ण ने भी नहीं किया, ये महाप्रभु जी ने कहा, ये उनकी परम करुणा की बात है। तो रसिक शेखर हैं, परम करुण हैं, प्रेम रस का निर्वास आस्वादन करते हैं राग मद भक्ति के द्वारा, और रागात्मिक भक्तों का और आस्वादन करते हैं, और राग मद भक्ति का नाम के माध्यम से जगत में प्रचार करते हैं, लोभ उत्पन्न करने के लिए ये स्थिति पैदा करते हैं, लोगों को लोभ उत्पन्न। कोई आदमी दरिद्र व्यक्ति विराट धनी होने चाहता है, क्यों, धनी लोगों का रहन सहन देखकर, उसके ऐश्वर्य भोग को देख करके किसी को देखा, परम कोई सुंदर युवक, कोई सुंदरी युवती के साथ में समुद्र के किनारे, या सुंदर आजकल दिल्ली इत्यादि में पार्कों में टहल रहा है, समुद्र के किनारे झूलते हुए पार्क में, एक रिक्शा पुलर ने देखा तो उसके अंदर में क्या भावना होगी, बस देखता ही रह गया, कहा जब हमको भी ऐसा होता, ऐसी सुंदर हमको कोई लड़की मिल जाती और ऐसी संपत्ति मिल जाती और ऐसे ही मैं करता, रिक्शा नहीं चलाना पड़ता, ये लोग हुआ ना, ऐसे हम लोग हैं। यदि उन लीलाओं का कोई श्रवण कराए ऐसा व्यक्ति, जैसे महाप्रभु जी ने राय रामानंद से सुना और उसको रूप रघुनाथ जी ने सुना, उसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सुना, उसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने सुना, लोभ हाथ आ गया, राग मग पर चलते चलते वहाँ तक पहुँच गए। यही चैतन्य महाप्रभु जी की परम दया, दया की अंतिम सीमा है। और रसिक शेखर उसको आस्वादन करके उसके छींटे मूटे, ये छेटा मूटा है, ये सब दिया जगत को। प्रभुपाद कहते हैं विद्या भक्ति, अविद्या भक्ति, शुद्धा भक्ति। शुद्धा भक्ति से चैतन्य महाप्रभु जी ने राग मार्ग को पहुंचाने के लिए, राग मार्ग को बतलाने के लिए है, और यही बढ़ते बढ़ते महाभाव इत्यादि तक जब जाता है, उस समय भक्ति नहीं नाम होकर के प्रेम महाभाव इत्यादि नाम होता है, यही शुद्धा भक्ति है। यह आरंभ होता है कहाँ से? रागानुगा भक्ति से, अब पर्यवसित होता है रागात्मिका भक्ति में। ये प्रभुपाद जी का यही विचार है। इसलिए उन्होंने शास्त्रों में चैतन्य चैतामृत इत्यादि में जहाँ भी शुद्धा भक्ति और उत्तमा भक्ति इत्यादि का उल्लेख किया है, इसी भक्ति के उद्देश्य के लिए किया। तो कृष्ण लोभ किस चीज को लिए होता है? जिसने जिसको कभी नहीं मिला, तो कृष्ण के लिए भी तो ऐसा है जो कभी नहीं मिला, इसलिए तो लोभ हुआ है ना। जिसको कभी कोई चीज नहीं मिलती है उसके लिए लोभ हो, यह तो युक्ति युक्त मालूम होता है। और जिसके लिए सब समय उपलब्धि हो, मिल रही है, तो उसको क्या लोभ होगा? लोभ होगा, उसको तो पूरा चीज ही है। तो ये इसका कैसे सामंजस्य करेंगे जो उनको लोभ
बढ़ता?
अब उसी पर ये विचार करते हैं। अमा के तो जे भक्त करे, भक्त भजे जे भावे, तारे से भावे भजी एमर स्वभावे। ये कृष्ण का स्वरूपानुबंधी गुण है। क्या उसके भाव को बदलते नहीं है? यदि बदले तो ये निरपेक्ष नहीं होंगे कृष्ण, तब तो पक्षपात हो गया। उसका बदल दिया तो हमारा क्यों नहीं बदलेंगे, है कि नहीं? हम लोग कहेंगे अच्छा सर आपने बिल्ल मंगल को बदल दिया, तो हमको क्यों नहीं बदलेंगे? आपने और लोगों को पुतना को कर दिया, हमको क्यों नहीं करेंगे? आप आपके यहाँ हंगर स्ट्राइक करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कृष्ण कहते हैं जी हमारे स्वभाव का व्यतिक्रम नहीं होता। भक्तों में व्यतिक्रम होगा, उनमें भी कौन सा भक्त में? मध्यम भक्त में। उत्तम अधिकारी भी भगवान की तरह ही होते हैं, जो जैसा है वैसा चलने दे रहे हैं, वो देखते हैं कि सभी भगवान का भजन। मध्यम अधिकारी का संग सबसे बड़ा भारी दुर्लभ है, किंतु यथार्थ मध्यम अधिकारी वो ये सबको उसमें विचार करता, ये ठीक नहीं, ये ठीक है, ये ठीक संग नहीं, ये ठीक संग है, इसको ऐसा चीज देना चाहिए, नहीं चाहने पर भी दो, ये कौन करेगा? क्योंकि इसके लिए ये दोष नहीं है, किंतु भगवान यदि ऐसा करें तो ये दोष आव हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ये हमारा स्वभाव है। इसलिए जे जथांग माम प्रपद्यन्ते, जिस भावना से जो हमारी सेवा करता है, मैं वो दी चाहता है जो हम मोक्ष हमको मिल जाए, सायुज मृत्यु मिल जाए, वो चाहता है कि मैं कर्म करूं, कर्म से भोग आ जाए, स्वर्ग मिल जाए, मैं सब महिम वही प्रदान करता हूं, ये मेरा स्वभाव है। किसी को स्वभाव को बदलना बिगाड़ना ये मेरा स्वभाव, जो जैसा है, जो जथा जैसा है वैसे करना। अब इसको कहते हैं पूर्ण एक्सटेंट तक, पूर्ण एक्सटेंट माने मुक्त परग्रह वृत्ति से, जो जैसा हमारा भजन करता है वो साधारण लोगों के लिए छोड़ दो, वो सब भक्ति टकती नहीं। जो देवताओं की उपासना करते हैं, मेरी ही पूजा करते हैं, वो तो साधारण रूप में कह दिया है, किंतु सब अविधि पूर्वक है। और जो विधि अवलंबन करके मर्यादा मार्ग से जो हमारा भजन करते हैं, उनको भी वैसा दे देता हूँ, वैकुंठमयी भक्ति देता हूँ, इसकी भी बात मैं नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा महाप्रभु जो जिस चीज को देने के लिए आए उसी को यहाँ पर बतला है। कृष्ण सोच रहे हैं मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राण प्रति, अर्थात वात्सल्य, सख्य और मधु, इन तीनों को कहा। इनमें से एक भाव से जो मेरी भक्ति करता है उनको वही मोरे करे शुद्ध भक्ति, इसी की ये व्याख्या प्रभुपाद जी की सुनाई। शुद्ध भक्ति मैंने मधुर रागात्मिक, और उसके अनुगमन में उसके लोभ उत्पन्न होने पर भी ऐसा ही मुझको प्राप्त हो तब रागानुगा। ये रागानुगा को देने के लिए महाप्रभु जी आए और रागात्मिका का आस्वादन करने के लिए, रागात्मिका में भी श्रीमती राधिका जी का सर्वश्रेष्ठ भाव आस्वादन करने के लिए। जो मर करे शुद्ध भक्ति, ऐसी शुद्ध भक्ति करता है, आमा के बड़ो माने, आमा के बड़ो माने अपना के बड़ो माने हमारे समही, हमको बड़ा मानता है,
अपने को बड़ा मानता
है। हाँ, अपने को बड़ा मानता है माने हमारे गुरु जी सांडिल्य ऋषि हमसे बड़े पूजनीय, नंद बाबा उपनंद नंद अभिनंद सुनंद और इनके जितने भैया लोग हैं, और हमसे हमारे माता जी के जितने कुटुंबी लोग हैं, माता जी की बहनें उनके पति लोग और सब जितने पूजनीय लोग हैं, ये अपने को बड़ा मानते हैं और कृष्ण को छोटा मानते हैं। यह भक्ति वात्सल्य गुरुजनों में, और अमा के माने हमारे समहीन और हमको बराबर याहीन, हमको छोटा समझते हैं या बराबर। बराबर समझने वाले दो हैं, सखा और सखी, दोनों बराबर, और हीन मुझको अपना को हमारे मान सम और हीन, और हमको छोटा मानते हैं अर्थात वात्सल्य। इन तीनों के द्वारा ही यही भाव आमी हई तहार दीन, ये यदि भाव होगा लौकिक शब्द होता वात्सल्य हो अथवा सख्य हो अथवा मधुर भाव हो लौकिक संत बंधुवत, तो उस प्रेम के द्वारा मैं वशीभूत हो जाता हूँ। और लाख कोई ऐश्वर्यमयी भक्ति करे तो विधि भक्ति के द्वारा अधिक से अधिक तरह से विधि भक्ति से भी प्रेम होगा, वैधि भक्ति से भी क्रमशः निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और अंत में प्रेम होगा, किंतु वह बढ़ करके वैकुंठ तक ही वो जाएगा और वहीं पर फलेगा फूलेगा, वो आगे नहीं जाएगा। इसलिए वैधि भक्ति का अंतिम चर अंतिम वैकुंठ तक है, किंतु ये जो भक्ति है ये ब्रज तक पहुंचती है। माता मोरे पुत्र भावे करण बंध, यशोदा माँ देवकी कभी उनको बांध नहीं सकती, यशोदा नहीं है ये कौशल्या मैया नहीं बांध सकती, अदिति इत्यादि उनको नहीं बांध सकती, किंतु यशोदा माँ पुत्र के रूप में हमें बांध देंगे, क्योंकि उनका शुद्ध वात्सल्य हमें अर्थात रागात्मिक उनका प्रेम है, इसलिए उस राग के द्वारा अनुराग के द्वारा हमें बांध लेती है। अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन, ये करवट नहीं बदल सकता, हमारे स्तन को अपनी चेष्टा से मुख में नहीं ले सकता, क्या करेंगे, उसको मुख के निकट ला करके अपने स्तन को उसके मुख में दे दी। मच्छी नहीं भगा सकता, मक्खियां होती हैं ना, नहीं भगा सकता, क्या करेंगे,
वो अपने कपड़े से या पंखा से
हवा देंगे। इसी तरह से रो रहे हैं पल्ले में झुला करके थपथपी दे करके गाना उनको सुना रहे हैं, लोरी सुना रहे हैं, करे लाल न पाल, मैं ऐसे भक्ति के द्वारा अधीन होता हूँ। सखा शुद्ध सखे करे स्कंदे आरोहण, शुद्ध सखे शुद्ध प्रेम रूपी जो सखा भाव है, इसके द्वारा हमारे कंधे पर यदि चढ़ जाए, मैं उनका चढ़ूंगा ये तो कोई बात नहीं है, तो हो सकता है, किंतु वो हमारे कंधे पर चढ़ करके दुल्की चलाए चलाए घोड़े जैसा, उसमें वो प्रसन्न होता है। कृष्ण बेचारे ले नहीं चल पाते तो गिर जाते हैं, वो भक्त भी गिर जाता है, ये भी बलदेव प्रभु आकर के दोनों को उठाते हैं, अरे भाई कोमल शरीर है इसके कंधे पर चढ़ गया, इससे प्रसन्न होते हैं। तुम्ही कौन बड़ो लोग, तुम्ही आमी सम, तुम कौन बड़े लोग हो, तुम्हारे पिताजी हमारे पिताजी से बड़े थोड़े हैं। आपको 9 लाख गाय हैं, आपके पिताजी को हमारे पिताजी को भी 9.5 लाख गाय हैं। वो श्री राम कहेंगे ये 11 लाख। और राधा जी से कोई बात पड़ता होगी तो वो भी कह देंगे, सुना देंगे। तो इसलिए कहते हैं, वो कह देंगे तुम कौन बड़े लोग हैं, हमसे तुम बड़े नहीं। प्रिया यदि मान करी करे भर्सन, प्रिया यदि मान करके भर्सन करती है, फूल निकाल करके मारे, उनको गाली गुप्ता सुनाए, चोर लंपट धृष्ट कपटी धूर्त इत्यादि, तो ब्रह्मा की स्तुति से भी उनका चित्त हरण कर लेता, उसके वशीभूत हो जाता, इसीलिए वो राश अंतर ध्यान थे ये सब सुनने के लिए। वेद स्तुति हैते हरे से ही मोर मन, यही शुद्धा भक्ति, ये शुद्धा भक्ति कौन सी हुई, रागात्मिका में ले गए, रागात्मिका भक्ति, किंतु उस समय उसका नाम भक्ति नहीं रहता, वो सब प्रेम के पर्यायवाची शब्दों के द्वारा उस भक्ति को जानते हैं, इस जगत में ही भक्ति कहते हैं। यही शुद्धा भक्ति लइया करियु अवतार, करिमु
अवतार,
अच्छा शब्द का अर्थ देखो, यही शुद्धा भक्ति लइया, लइया मैंने कहाँ से लेकर, हाँ वहाँ पर जमे, वहाँ से लेकर कैसे लिया, भक्ति कैसे ले आएंगे, जिसके हृदय में है ना उसको साथ में ले आएंगे, किनके हृदय में ये सब है, उन सब को साथ में, और जिन स्थानों पर ये चीज़ें प्रकाशित होती उस स्थान समेत, जैसे वो स्थान समेत ही उनको हरण कर लिया, गोलोक वृंदावन में पूरे स्थान और पूरे परिकरों को लेकर के जिनमें ये प्रेम है वो प्रेम भी आ गया। इसलिए ए शुद्धा भक्ति लइया, गोलोक वृंदावन से लिया, और करिमु अवतार, ये जगत में अवतरण कर, अवतार माने क्या, अवतरण करना,
उतरना,
इसलिए कृष्ण अवतार लेते हैं, किस रूप में, महाप्रभु के रूप में। वैकुंठादि अद्य नाही जे जे लीला प्रचार, से लीला करीब जाते मोर चमत्कार। वैकुंठ आद्य माने वैकुंठ, वैकुंठ में बहुत से प्रकोष्ठ हैं, 24 लीला अवतार, और इसके अतिरिक्त और कोटि कोटि अभी तो ये जगत में प्रकट हैं, ऐसे बहुत से लीला हैं जो अभी तक नहीं प्रकट हुई या उसका वर्णन नहीं कहीं देखा जाता है। मौनी भी तो एक अवतार है, मौनी इत्यादि अवतार हैं, ये सब का वैकुंठ में अलग अलग स्थिति है, प्रकोष्ठ हैं, मोहिनी मोहिनी इत्यादि, तो ये सब जितने भी लीला हैं अवतार हैं ये सब वैकुंठ में स्थिति है। तो वैकुंठ में आदि में उन स्थानों में साकेत में यहाँ तक कि द्वारका और मथुरा तक में भी, गोलोक में भी, गोलोक माने गोलोक को, गोलोक का माने इनका जो तीन जो लीला के स्थल हैं उनमें निम्न वाला, इसको कहते हैं गोलोक। ऐश्वर्य माने स्वकीय भाव युक्त कृष्ण की लीलाएं जहाँ पर होती हैं उनको कहते हैं गोलोक। गोलोक का अंतिम और निवृत्त जो सबसे अंतरतम प्रकोष्ठ है उसका नाम है ब्रज। वैकुंठादि अद्य नहीं जे जे लीला प्रचार, से लीला करीब जाते मोर चमत्कार, जिसमें हमारा चमत्कार होता, हमारा चित्त चमत्कृत हो जाता है, ऐसी ऐसी लीलाओं को करूंगा जो वैकुंठ इत्यादि में नहीं। आजकल एक नई चैतन्य महाप्रभु जी की चैतन्य चरितामृत का की टीका निकली है, नई नहीं वो भी हो गया 30-40 वर्ष, क्या नाम है उनका, राधा गोविंद नाथ जी, हाँ बाबा जी लोगों के संशय में रह करके उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, उन्होंने कहा बैकुंठ आदि ते, माने होता है बैकुंठ आदि, माने बैकुंठ, बैकुंठ से ऊपर, यहाँ तक कि गोलोक, वृंदावन, ब्रज, गोकुल, कहीं भी ये लीला का प्रचार नहीं है, नई चीज बिल्कुल, इसलिए उनको लोभ होता है। इसलिए यहाँ पर आएंगे प्रकट लीला में तब उसका आस्वादन करेंगे, इसलिए। किंतु यह सर्वथा गलत और असिद्ध, क्योंकि यहीं पर बतलाया शुद्धा भक्ति लइयां करिमु अवतार, उसको ले करके वहाँ से कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर प्रतिदिन दिन उनको चमत्कृत होते हैं वो कृष्ण चमत्कार, उन उसी चीज़ को लेकर के इस जगत में दिखलाने के लिए, बैकुंठ के लोगों को दिखलाने के लिए, आराम आदि अवतार के लोगों को दिखलाने के लिए, द्वारका और मथुरा के लोगों को दिखलाने के लिए वो जगत में आ रहे हैं, वहाँ से लेकर। वो कहते हैं कि पारकीय भाव वहाँ नहीं है, पारकीय भाव नहीं, ये तो मायामय भाव है, इसलिए नहीं हो सकता, इसलिए उसको लेकर के यहाँ आने की, ये प्रकट लीला में ही पारकीय भाव जोग माया के द्वारा किया गया है, ये चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, वो कहते हैं राधा गोविंद। किंतु एक है ना, दुष्कृति व्यक्ति भी वेदों से अपने मन के अनुकूल में तोड़ मोड़ करके कोई प्रमाण दे सकते हैं, इविल कैन कोट
स्क्रिप्ट
है,
स्क्रिप्चर्स,
जानते हैं इविल, इविल माने बुरे लोग भी अपने पक्ष के समर्थन में कहीं से शास्त्रों का उधर में तोड़ मोड़ करके और उसको ले आते हैं,
इविल कैन कोट स्क्रिप्चर्स।
इसलिए कहते हैं मो विषये गोपी गणेर उपपति भावे, मो विषये कितना बज गया, 6:30, 7 कितना बजा, विषये गोपी गणेर उपपति भावे, और सबको तो छोड़ो, शांत दस सख बात्सल्य तक ले आओ, मधुर में भी स्वकीय भाव को भी छोड़ दो, यहाँ तक तो मर्यादा में ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो वहाँ तक भी गोलोक वृंदावन में भी ये है, किंतु उपपति भाव नहीं है वो लोग कहते हैं, इसलिए किंतु यहाँ कहते हैं मोम विषये गोपी गणेर उपपति भावे, जोग माया करिबेक आपन प्रभावे, हमारे विषय में गोपियों का जो उपपति भाव है कहाँ है, आकि है ही नहीं है, नए रूप में आया, उसको देख करके उसको लेकर के यहाँ आना चाहते, इसलिए कहते हैं हमारे विषय में गोपियों का जो उपपति भाव है वो इस जगत में जोग माया संपन्न कराएंगी, ये इसका तात्पर्य, वहाँ है ही नहीं है और केवल उसका आस्वादन करने के लिए यहाँ है, जैसे घर में बीवी सुंदरी नहीं है, ऐसे लोग ही तो वेश्या इत्यादि के पास में जाते हैं, उनका मन पूरा नहीं है, तो ऐसे कृष्ण को यह भाव नहीं वहां पर है, इसलिए नहीं कहते हैं कि ऐसा राधा जी कृष्ण की ऐसी कोई भी बात नहीं है इच्छा जिसको वो पूरा नहीं कर सकते, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा, सर्वकांति के द्वारा ये अर्थ बदला, कृष्ण की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली ये वंशा कल्पतरु, हम लोगों के वंशा तरु कृष्ण हैं और कृष्ण की वंशा कल्पतरु श्रीमती राधिका है, इसलिए वहाँ पर है ही नहीं है, राधिका जी में ये भाव ही नहीं है, नया आया इस प्रकट जगत में ये सर्वथा गलत सिद्धांत, इसी प्रकार के हजारों उसमें गलतियाँ हैं, इसलिए वो सब पढ़ करके तुम लोग गड़बड़ मत करना, भक्ति विनोद ठाकुर जी का विचार, अमृत प्रवाह और प्रभुपाद जी का विचार पढ़ना, ये लोग सिद्ध महात्मा हैं, जोग माया वही जोग माया इस जगत में प्रकट करेंगे, जैसे उस जगत में उपपति नहीं है, उपपति का भाव है, और ये जोग माया उपपति के भावों को यहाँ पर मूर्ति दे करके अभिमन्यु गोवर्धन भट्ट और सब गोवर्धन मल्ल इत्यादि को और राधा जी के गोपियों का इन गोपों के साथ में शादी नहीं है, किंतु ऐसी भावना करा देंगी जगत को भी और इन लोगों को भी अंदर में जो हमारी शादी से हुई, ये जोग माया का काम है। वहाँ पर ये चीज़ें भावनामयी हैं, नित्य काल से ही हैं। यशोदा जी के कृष्ण प्रकट होते हैं कि नहीं गर्भ से, ये बात सब समय ये जानती हमारे पुत्र ही हैं। अभिमान, इसलिए उनका भी अभिमान, वही अभिमान यहाँ मूर्ति धारण करता है। आमी हा न जानी तहाँ ना जाने गोपीगण दुहार रूप गुने दुहार हरे नित्यमा, मैं भी नहीं जानूंगा, मैं जानूंगा ये मैं किशोर बालक हूँ, हमारी अनंत कामनाएं हैं गोपियों के साथ में क्रीड़ा करते हैं, और वो भी लोगों से छिप कर अपनी शक्ति को भूल करके, जे ये पराशक्ति हैं या उसके काय व्यू हैं, कृष्ण में जितनी शक्ति इनमें ही है, इस चीज़ को वो भूल करके साधारण लौकिक बालिकावत और कृष्ण किशोरवत दोनों क्रीड़ा करते हैं, रस का आस्वादन करते हैं, दोहों दोहार हरे मन, दोनों दोनों का मन हरण करते हैं। धर्म छाड़ी रागे दुहे करे मिलन, धर्म को छोड़ करके वर्णाश्रम धर्म में अपने पति को छोड़ना उचित नहीं, किंतु इस धर्म का उल्लंघन, वेद धर्म का और सबको उल्लंघन करके दोनों से मिलते, दोनों मिलते हैं, कभी मिले कभी ना मिले, कभी मिलते हैं और कभी नहीं। दैव और घटन, मानो दैव घटना के, दैव के द्वारा अधीन है, दैव माने काल, हम लोग अभी काल के अधीन हैं, अभी कोई काले मित्र अकाले अपौर, जो अपना बेटा है अपना मित्र है वो शत्रु बन जाता है, और शत्रु काल के अनुसार में देखते हैं ना, इस जगत में अपना बेटा पराया हो जाता है, दूसरे का बेटा अपना हो जाता है, अपनी स्त्री पराई हो करके उसको बंदूक से या सोते समय में काट देती है और दूसरी उसकी रक्षा करती है, इसी तरह से समझो। तो काले मित्र अकाले पर हम लोग बाध्य हैं, किंतु कृष्ण के ऊपर में कौन काल है जो मिलने देता है नहीं मिलने देता है, ये जोग माया कराती है, वहाँ पर काल का अधिकार नहीं है। यही सब रस निर्जास करीब आस्वादन, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, अभी मिले राधा जी और कृष्ण, अभी तुरंत अभी मिले हैं, एक दूसरे से भेंट हुआ, इतने में जटिला का शब्द सुनाई पड़ा, अरे बधु कहाँ है तू कहाँ है, बस फिर छिप गए, और फिर 10 दिन तक मिलन नहीं हुआ, और ये भीतर में जो रोमांच हुआ, अरे यदि देखती तो क्या होता, अभी हम लोग मिल ही रहे थे, प्यासा एकदम मीठे सरोवर के पास में पहुंचा, सुंदर मीठा जल है, और पानी उठाया इतने में किसी ने हाथ से उसको छुड़ा लिया, प्यासा का। ऐसे ही कभी मिलते हैं और कभी मिल करके भी बिछुड़ जाते हैं, इसको कहते हैं रस निर्जास करीब आस्वादन। यही वृंदावन में मैं नवदीप धाम में मैं प्रकट होकर के इन लीलाओं का रस आस्वादन करूंगा, यही द्वारे करीब सब भक्तेर प्रसाद, और इस लीला के द्वारा क्या करूंगा, सब भक्तेर प्रसाद, कौन भक्त, जिसको लोभ हो गया है, ऐसे भक्तों को हृदय में लोभ उत्पन्न करा करके कोई राग मार्ग पर चलाऊंगा, यह है उनको हुआ, ऐसे भक्तों का प्रसाद करेंगे। ब्रजे निर्मल राग सुनी भक्तगण, राग मार्ग भजे जेनो छाड़ी धर्म कर्म, इसको सुन करके राय रामानंद चरित्र रूप गोस्वामी का मिलन इत्यादि सुन करके, रथ यात्रा प्रसंग सुन करके लोग राग मार्ग में भजन करेंगे। जैनो छाड़ी धर्म, मानो क्यों कहा जैनो, ऐसा लगता है किंतु नहीं, यही सर्वास ठीक है, यही सिद्धांत सार है, किंतु जैनो माने ये मालूम पड़ता है जी ये ठीक नहीं है। गोपियाँ या सखा कृष्ण को गाली देते हैं, वो ब्रह्मा जी अच्छे हैं क्योंकि वो स्तव स्तुति 10 मुख से 5 मुख से 4 मुख से कर रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ठीक है, अरे ये गोपियाँ उनको गालने गाली देती हैं, हनुमान जी के समझ में नहीं आ गया क्यों ऐसा हो रहा है, इसलिए कहते हैं कि ऐसे भक्ति को ऐसे मालूम होता है किंतु यथार्थ में ये नहीं। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहं आश्रित भजते तादृशी क्रीड़ा जा सुत्वा परम, कल इसकी व्याख्या करेंगे।
चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दू तं सर्वभूतरिदं तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं मां शरणं।
श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की क्या थी, विरति थी, आविर्भाव थी, और आज श्री हरिदास ठाकुर जी की तिरभाव हो आविर्भाव हो दोनों एक ही चीज, उनका दोनों एक ही चीज़ है, तिरभाव और आविर्भाव दोनों ही एक तात्पर्य है। आविर्भाव प्रभु की सेवा करने के लिए आते हैं और उनके आदेश से जगत का कल्याण करते हैं और फिर प्रभु की सेवा के लिए चले जाते हैं, फिर जब जरूरत होगी तो फिर आएंगे। उनका मरण जन्म और मरण नहीं, जैसे आविर्भूत होकर के जीव को शिक्षा दिया, जगत का कल्याण किया, प्रभु के सेवा में सबको नियुक्त करने की चेष्टा की, और तिरोभाव में उनके विरह में जो लोग श्रवण किए अब उसी तरह से उनका स्मरण करें। अब गुरुजी हम लोगों के मान लिया कि कुरुपाद पद आविर्भूत होते हैं अपने गुरु की सेवा करने, जगत का कल्याण करने के लिए, इस सब के लिए जीवों को, बर्मुख जीवों को, अंतर्मुख अंतर्मुख जीवों को क्रमशः भक्ति पथ पर अग्रसर कराने के लिए उनका अवतार। विरह में भी ऐसा ही करते हैं, प्रभु की नित्य सेवा में फिर चले जाते हैं और वहीं से प्रेरणा देते हैं भक्तों के हृदय। हम लोग जो कुछ कर रहे हैं ये सब कहाँ से आ रहा है, जो कुछ भी अच्छा बुरा कहते हैं ये किसकी प्रेरणा से होता है। आज उनकी कृपा नहीं होती तो एक शब्द भी हम लोग कुछ नहीं कर। इसलिए वैष्णव ने विरह महोत्सव जैसे कहा जाए, जन्म महोत्सव, आविर्भाव महोत्सव, वैसे ही इनका तिरुभाव महोत्सव, विशेष करके तिरुभाव के दिन में उनकी समस्त लीलाओं का स्मरण जीव अपने हृदय में करते हैं। जैसे आज हरिदास ठाकुर जी का, हरिदास ठाकुर का नाम स्मरण किया और उनकी प्रारंभ से जगत के जीवों के लिए आविर्भूत होकर के जो कुछ किया, महाप्रभु जी का संग वहाँ में पूरी तक में रहे, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, यह सब स्मरण आ जाता है। आज जो नहीं जानता उसके लिए कुछ नहीं, इसलिए स्मरण में आना बल्कि विरह में और होगा, इसलिए इसको महोत्सव का। अब आप लोग स्मरण कराएंगे, अभी हम संक्षेप में दो एक बातें बतलाता हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर जी का कल का आविर्भाव हो गया, हम लोगों ने कोई याद ही नहीं,
याद था
हैं, बस हम लोग स्मरण आज उनको करें। भक्ति विनोद ठाकुर का सारा जीवन का सार उन्होंने शिक्षाओं को संकलित करके हम लोगों के लिए रखा। पहले तो ये समझो, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगबराय। प्रणाम मंत्र में ही सब कुछ उनको दे दिया गया। पहले तो वो गौ की शक्ति है और सब समय वो शक्ति होने के नाते भक्ति विनोद भक्ति के द्वारा अपने आराध्य देव गौरचंद्र अथवा राधा कृष्ण जुगल की का वो विनोदन करते हैं। इसलिए नमो भक्ति विनोदाय, उस भक्ति विनोद ठाकुर जी को मैं नमस्कार करता हूँ, पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ, जो गौर की चंद्र की शक्ति है, गौर शक्ति स्वरूपिणी है, गौर शक्ति स्वरूपिणी है। विशेष करके लोग कहते हैं गदाधर जी का कुछ भाव इनमें है, अर्थात गदाधर जी राधिका जी की ये सखी सहेली सेविका मंजरी कमल मंजरी है। इसलिए गदाधर जी की शक्ति स्वरूपिणी इनको कहा जाता है, रूपिणी नमो भक्त विनोदाय गौर शक्ति स्वरूपिणी
सच्चिदानंद
इति नामिने,
नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने
गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग बरायति। और रूपानुग तो कल हमने जो कहा उसको समझो, उसी में इसको लगा दो रूपानुग में। रूपानुग गणों में ये प्रधान है, रागानुगा से भी रूपानुग का महत्व है। रागानुगा सभी आ गए, संत दासक वात्सल्य मधुर सब, और उनमें रूपानुग जो होगा खास वो रूप गोस्वामी के आचार विचारों को भावों को ग्रहण करने वाला ही रूपानुगा। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, ये सब लोग रूपानुगा हैं। हम अधिक समय नहीं लेकर के एक उनकी एक शिक्षा पर ही विचार करते हैं। सच्चित आनंद नामिने, प्रभु तो सच्चिदानंद हैं, तो सच्चिदानंद स्वरूप जो कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके सेवक रूपों में, सेवक के रूप में उन्हीं का विनोदन करने के लिए, उन्हीं का दास नाम धारण करके जो आए हैं, उस सच्चिदानंद भक्ति विनोद नामिने नाम धारण करने वाले इस जगत में जो हैं उनको प्रणाम करना।
बता रहे थे उनके अंदर कुछ विषय का भाव है, कहाँ किस लिए
क्या विषय का सच्चिदानंद माने ही तो सत तो हुए बलदेव प्रभु, चित मैंने हुए कृष्ण, आनंद माने श्रीमती राधिका, उसमें भी प्रधान जुगल स्वरूप, उन्हीं के अनुसार में वैष्णवों का अपना अपना नाम रखते हैं या गुरु पाद पद्म उनका नाम रखता है। तो इसलिए जैसे किसी का नाम रख दिया रसानंद, रसानंद है ये, रसानंद कौन है, कृष्ण ही रसानंद है, अकेले रसानंद नहीं हूँ, राधा जी के साथ में रहने पर रसानंद हूँ, रसानंद दास ये नाम दिया। ऐसे सच्चिदानंद नामिने, सच्चिदानंद में सच्चिदानंद भक्ति विनोद नाम, इस जगत में ये नाम धारण करना, किंतु उनका स्वरूपतः नाम कुछ और है, जगत में अपने को इसी रूप में उन्होंने प्रकाश किया। पहले उनका नाम था केदारनाथ, क्या वो केदारनाथ दत्त बाल्यपन, और इसके बाद में केदारनाथ दत्त को हटा करके उन्होंने भक्ति विनोद सच्चिदानंद भक्ति विनोद सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा उनका नाम रखा। उनकी एक शिक्षा में हम देखते हैं, वैसे असाधारण इनका क्रियाकला। इस युग में भक्ति भागवती भक्ति भागीरथी की जब धारा सूक्ष्म हो रही है, उसमें पुनः उस प्रवाह को जागृत करने वाले हैं, लाने वाले हैं इसलिए इनको पंचम गोस्वामी बतलाया गया, सप्तम गोस्वामी, पंचम सप्तम गोस्वामी इनको कहा गया भक्ति विनोद ठाकुर। वो जब नहीं आते तो रूप गोस्वामी द्वारा प्रवाहित की चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवाहित ये भक्ति ही एकदम नष्ट हो जाते, सजिया सखी भेकी इत्यादि नष्ट करते। तो उनकी एक शिक्षा में हम लोग ये देखते हैं, अपराध शून्य है लह कृष्णा, इसको लिखने के लिए मत लिखो। किस लिए लिखो?
जीवन उतारने के लिए,
उतारने के लिए, लिखने के लिए, दूसरों को उपदेश देने के लिए मत लिखो। अपने जीवन में इसको अक्षरशः पालन करने के लिए, साधन करने के लिए इसको सुनो। अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्णेर संसार कर छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सर्वधर्म। तो देखो भालो करे जे की आछे नाम पतन देखो, तुम्हारे सत्य ना आमार सत्य ना कि तुम्ही तो बोलछो। हाँ विद्या विनोद प्रभु बोलछेन तो देखो तो जे की ठीक आमार आमी जे बोलछी ठीक ना तुम्ही अनाचार जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, नामे रुचि ये सर्वधर्म सार नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। यदि नाम प्रेम होता तब ये जीव का सार होगा, नाम रुचि तभी साधक अवस्था से भी, अभी कहाँ नाम में रुचि, नाम रुचि ही सर्वधर्म का सार हो जाएगा, होगा नाम में रुचि सर्वधर्म का सार कैसे होगा? नहीं होगा। नाम रुचि करते करते साधन से यदि भ्रष्ट हो,